एहेस्केल अध्याय दो, अध्याय दो पद एक। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मनुष्य की संतान, इस संबोधन को एहेस्केल ने अनेक बार प्रयोग किया है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने लिए यही संबोधन प्रयोग किया है। परमेश्वर भी एहेस्केल के लिए इसी संबोधन का प्रयोग करता है। एहेस्केल अध्याय दो पद एक। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो। आपको ध्यान होगा कि इस दर्शन को देखते ही वो मुंह के बल गिर गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर के सिंहासन के तेज को और बिजली की चमक को देखा था। तब उसने एक आवाज सुनी, अपने पांव के बल खड़ा हो। एहेस्केल अध्याय दो पद एक और दो। मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। पहले उसने दर्शन देखा, फिर यहोवा की वाणी को सुना। एहेस्केल अध्याय दो पद तीन और चार। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज और हठीले हैं। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वो यहूदा ही के नहीं वरन संपूर्ण इसराइल के घराने के पास जाए। एहेस्केल अध्याय दो पद पांच। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने वो ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। मैं तुझे अपने नाम में भेजता हूं, चाहे वे सुने या ना सुने, क्योंकि वे निर्लज और हठीले हैं। परंतु जब तू उन्हें संदेश दे चुका होगा, तब वे जानेंगे कि उनके मध्य परमेश्वर का एक भविष्यद् वक्ता था। एहेस्केल अध्याय दो पद छह। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटो, उटकटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। परमेश्वर एहेस्केल से कहता है, वे तुझे स्वीकार नहीं करेंगे, वे हठीले और निर्लज हैं। हो सकता है तुझ पर कटीली झाड़ी रगड़ दी जाए। उस समय दंड देने की एक विधि ये थी कि शरीर पर कटीली झाड़ी रगड़ते थे। उन लोगों के पास दंड देने के लिए मोटे कांटों की झाड़ियां थी, परंतु परमेश्वर कहता है, उनके मोटे कांटों से नहीं डरना। एहेस्केल अध्याय दो पद सात से लेकर दस तक। सो चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। वे तो बड़े विद्रोही हैं, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बड़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। प्रभु कहता है, जो मैंने तेरे सामने रखा है तुझे वो खाना है। परमेश्वर ने उसके सामने एक पुस्तक रखी थी जिसमें उन लोगों पर हाय, उनका विलाप और उनका शोक लिखा हुआ था। पुस्तक खाना एक प्रतीक था, जैसा यूहन्ना भी लिखता है। उसे भी पुस्तक दी गई थी और उसने उसे खाया। उसके मुंह में तो वो मधु की सी मीठी लगी, परंतु उसका पेट कड़वा हो गया। अतः यहां उसे वचन को खाने के लिए कहा गया था। आज भी आप सुनते हैं, उसने तो पूरी किताब घोटकर पी रखी है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसने उस किताब को मिक्सी में पीसकर प्रेशर कुकर में उबाल कर पिया। जिस प्रकार भोजन आपके शरीर का एक भाग बन जाता है, उसी प्रकार आंखों से होता हुआ पुस्तक का विषय आपके व्यक्तित्व का एक भाग बन जाता है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अतः यहोवा कहता है कि इस पुस्तक के वचनों को रट ले। हमें भी परमेश्वर के वचन को खाकर अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। परमेश्वर के वचन की भूख हम में होना आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तब वो वैसा ही मीठा होता है जैसा कि वो एहेस्केल के लिए था।